साकार ब्रह्मा बाप की चरित्र भूमि, वरदानी भूमि, अनेक यादों की, अनेक आत्माओं को सकाश देने वाली यह भूमि, ऐसी पवित्र भूमि में 5 दिन के लिए भट्टी करने का सौभाग्य प्राप्त होना, ये भी किसी पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। तो ऐसी सुखदायी भट्टी का आज से शुभारंभ है। हम सभी के बीच में इस भट्टी का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, वो स्पष्ट करने के लिए आदरणीय शिलू दीदी जी पधारे हैं। दीदी को सुनने से पहले हम सभी एक छोटी सी कविता सुनेंगे। आप सब के स्वागत के लिए ब्रह्मा कुमार रमेश भाई ने तैयार की है। आइए रमेश भाई, आप वीआईपी किचन में पांडव भवन में ही सेवा देते हैं और बहुत अच्छी कविता सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। कविता सुनने के बाद दीदी जी हम सभी को 5 दिन यहाँ भट्टी में रहने का हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण देंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आप आए तो हमें बेहद खुशी हुई और हमें भी मन में उमंग आया कि भाई कुछ जो भी बाबा ने हमें कला दी है उसके द्वारा आपकी सेवा करें, तो उसके लिए हमने आपके लिए कविता लिखे हैं कि जिनकी सूरत बाप जैसी सीरत दादा जैसी है, कि जिनकी सूरत बाप जैसी सीरत दादा जैसी है, सूरत वालों की कथनी करनी एक जैसी है। हम बड़े खुश नसीब, हम कर रहे सत्कार, और आपके आगमन से हमें हर्ष है अपार, हर्ष है अपार, हर्ष है अपार। कि परिवर्तन करना ही है, यही दृढ़ता की ढाल है, कि परिवर्तन करना ही है, यही दृढ़ता की ढाल है। आपके स्वागत में बज रही करताल है, कि हाल सदा खुशहाल और फरिश्ता चाल है, और माया देखी माया देखो हारी आपसे, हो गई बेहाल है, हो गई बेहाल है, हो गई बेहाल है। कि भट्टी के लिए आप पधारे आपका अभिनंदन, कि भट्टी के लिए आप पधारे आपका अभिनंदन, आपकी महिमा की कविता लिख हम करते वंदन। कि विघ्न विनाशक हो और हो तीव्र पुरुषार्थी, और विश्व कल्याणकारी हो और हो परमार्थी, और हो परमार्थी, और हो परमार्थी। कि मनसा सेवा खूब करो देते रहो सकाश, कि मनसा सेवा खूब करो देते रहो सकाश, निराकारी निर्विकारी रहते बाबा के पास, और समान साथी देख के बाबा करते वाह वाह, और बस मेरा तो एक बाबा रही न कोई चाह, रही न कोई चाह, रही न कोई चाह। ओम
ओम शांति। ब्राह्मण बच्चे जब आपस में मिलते हैं,
चाहे पहली बार मिलते हो इस कल्प में, चाहे कई बार मिले, लेकिन जब भी ब्राह्मण बच्चे बाबा के बच्चे आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? सबसे पहले दृष्टि के द्वारा मिलते हैं, क्योंकि दृष्टि अर्थात आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखना, जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि जब भी किसको देखो तो ये आत्मा मेरा भाई, मैं उनसे मिल रहा हूं। तो कैसे मिलो? पहले आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से मिलो, फिर दूसरी बात मिलो तो ओम शांति कहो। तो पहले दृष्टि से, फिर मुख से ओम शांति। तो आत्मा आत्मा भाई भाई, फिर ये भाई कैसा है और मैं कैसा हूं, ये भी शांत स्वरूप है और मैं भी शांत स्वरूप हूं। तो दृष्टि शुद्ध और पवित्र तो होगी ही, लेकिन साथ साथ आत्मिक प्रेम संपन्न भी होगी, वो आत्मीयता भी आएगी। दुनिया में देखो एक दोस्त से मिलते हैं तो क्या क्या सोचते हैं जब एक दोस्त से मिलते हैं, लेकिन जो कुछ भी सोचते हैं, जैसे भी देखते हैं, वो सब देह अभिमान के आधार पर है, मोह के आधार पर है, काम के आधार पर है, कई बार ईर्ष्या के आधार पर भी है। आत्मिक प्रेम बाबा कहते कोई नहीं जानता, आत्मा कोई नहीं जानते, लेकिन हमको बाबा ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है और हम आत्मा एक परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा का भी परिचय दिया है। और केवल ऐसे ही नहीं कि इस समय पहली बार मिले, माना पहली बार ही मिले हैं, क्योंकि सृष्टि चक्र का भी ज्ञान दिया है कि पता नहीं कौन से जन्म में किस रूप में भी मिले हो, है ना, आत्मा तो अविनाशी है। और चलो न भी मिले हो पर कल्प कल्प तो मिले ही है, इसीलिए अभी मिले हैं। तो देखो तीनों कालों का भी ज्ञान बाबा ने दिया है, रचना रचयिता रचना का ज्ञान। तो जिससे मुलाकात जब होती है तो नई मुलाकात नहीं है, और बाबा ने हमें 84 जन्मों का ज्ञान दिया है, उस अनुसार भी बाबा कहते अभी सब एक ईश्वरीय परिवार है, तो भविष्य में यही ईश्वरीय परिवार दैवी परिवार बन जाएगा। नहीं तो 84 जन्मों का ही संबंध है ना हमारा एक दो के साथ, या खाली एक ही जन्म का, 84 जन्मों का। तो देखो कितना उस बेहद स्वरूप से एक दो से मिलना होगा, तभी कहेंगे हाँ ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा है। तो बाबा को ऐसे बच्चे प्रिय लगते हैं जो फिर श्रीमत पर भी चलते हैं, सर्विसेबल भी हैं, कदम कदम पर बाबा को फॉलो करते हैं, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। उन बच्चों को बाबा इनाम देता है ना, स्वर्ग की बादशाही तो मिलती है, ये तो बहुत बड़ा इनाम है ही, लेकिन साथ साथ कई वरदान देता है, दुआएं देता है। और ऐसे बच्चे बिना पुरुषार्थ किए भी उड़ सकते हैं, मेहनत नहीं मोहब्बत में पलते हैं। तो ऐसे हो ना आप सभी, हो ना ऐसे, या मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत है या मोहब्बत है? तो बताए ना आपको तृप्ति बहन ने कि किस जन्म के अच्छे कर्म का फल है जो आप मधुबन में 4 दिन की भट्टी करने आई हैं। अवश्य कितने और होंगे, लेकिन आपको ही चुना तो इसका भी कुछ कारण होगा ना। कोईयों को कहा होगा पर कोई कारणवश नहीं आ सके, अपने कारणवश। कईयों को रोका भी होगा, वो भी उनके कारणवश। कुछ ऐसी धारणा की कमी होगी, परंतु जो पहुंच गए वो बहुत बहुत भाग्यशाली है। तो ये चार दिन आपकी कैसी रहेगी बट्ठी? नाम ही है मौन तपस्या बट्ठी। मौन में रहने का तो बहुत कम समय मिलता होगा, मिलता है? वहां रहते हैं, रह पाते हैं, मिलता है समय कि नहीं रह मिलता है? जो वहां भी रहते हैं हाथ उठाओ, कभी कभी रहते हैं हाथ उठाओ। अच्छा, वेरी गुड। माता एक भी नहीं, बोलने की आदत ज्यादा है। यहाँ भी सेवाधारी माताएं आती है ना, भाई भी आते हैं, परंतु भाइयों के कमरों से शिकायत नहीं आती है, पर माताओं के कमरों से शिकायत आती है कि 11-11, 12-12 बजे तक बातें करते रहते। और माताएं भाइयों की तरफ से नहीं आती है शिकायत। तो माताओं को ज्यादा बोलने का अभ्यास है, यह अच्छा लगता है बोलना। मौन में रहना अच्छा नहीं लगता है? तो जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए ना। तो देखो भाई पास हो गए, बहनों ने एक ने भी हाथ नहीं उठाया। ये उठाया किसी ने? अच्छा, पीछे आगे वालों ने नहीं उठाया। तो देखो, चलो कोई भी कारण से नहीं आप रह पाते हैं या लक्ष्य नहीं होगा, परंतु ये चार दिन तो आपको है लक्ष्य, और ये चार दिन आप रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ और कुछ तो करना नहीं है। और कुछ करना है क्या? माताओं को खाना पकाना है क्या? कोई सेवा भी नहीं करनी है? भाइयों को दफ्तर जाना है क्या? दुकान जाना है? कुछ भी नहीं। माताओं को पोतरे दोतरे तो होते हैं या तो वो भी नहीं है? कहा जाता है बच्चों से ज्यादा मोह पोतरे दोतरे में होता है। क्यों? बच्चों से ज्यादा मोह पोतरे दोतरे में क्यों होता है? बच्चों से भी अधिक, बच्चों में तो होता ही है, लेकिन पोतरे दोतरों में उनसे भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो मुफ्त में मिल गए हैं, इंटरेस्ट है ना। आपने तो मेहनत नहीं की ना उनको पैदा करने के लिए, वो तो आपने, आपके बच्चों ने पैदा किए, तो आपको मुफ्त में मिल गए। ये रिश्ता मुफ्त में मिल गया ना, आपने तो मेहनत नहीं की। वैसे भी बैंक में जब अकाउंट खोलते हैं ना, तो पहले ये पूछेंगे ब्याज कितना है, ब्याज कितना मिलेगा। तो जो वो जो रकम डालते हैं उनसे ज्यादा ब्याज को महत्व देते हैं। ब्याज कितना मिलेगा, 8%, 9%, उसका ज्यादा ध्यान रहता है। और जब वो पासबुक देखेंगे तो देखेंगे ब्याज मिला कितना, वो जितना है वो तो बाद में, पहले ब्याज कितना मिला। तो पोतरे दोतरे क्या है? वो ब्याज का रूप है, इसलिए उनको इंटरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में ब्याज को। तो इंटरेस्ट माना ज्यादा इंटरेस्ट है उसके अंदर, ब्याज। पर यहाँ तो वो भी नहीं है, वो धन की तो लेन देन है ही नहीं, लेकिन लौकिकता कुछ भी नहीं। तो बाबा ने ये आपको चार दिन दिए हैं, तो क्या लक्ष्य रख के बट्ठी करेंगे? पहले तो ये बुद्धि में हो कि बट्ठी किसको कहेंगे। देखो, कोई भी चीज जब आग में पकती है, आग में डालते हैं, तो आग में डालना माना एक ही लक्ष्य होता है कि ये बदल जाए। कोई भी चीज आग में पड़ी वो बदल जाती है। अब क्या चीज पड़ी, उस अनुसार क्या परिवर्तन आता है, वो हर चीज का अलग अलग है। जैसे टमाटर, बैंगन, आलू डालते हैं आग में तो क्या होता है? नरम हो जाता है। सख्त चीज है पर वो नरम हो जाती है ना। टमाटर, बैंगन, आलू पहले सख्त होते हैं, तो बैंगन डालते आग में भरता बना सकते हैं ना, तो नरम हो जाता है। फिर मिट्टी की ईंट होती है, बहुत नरम है, उसको आग में डालते हैं तो क्या होता है? सख्त हो जाती है। मजबूत हो जाती है। ऐसे ही गिरा तो गिर जाएगी, मिट्टी होती है, पर एक बार वो भट्ठे में पड़ी और ईंट बन के निकली, वो इतनी मजबूत होती कि अगर गिर भी गई तो टूटती नहीं। हाँ, कोई नई जात अच्छी तरह पकी तो वो टूट सकती है, पर जो अच्छी तरह पक गई वो तो मजबूत होती है। तो कोई चीज को नरम बनाती है, कोई चीज को मजबूत बनाती है आग। फिर काला काला कोयला डालते हैं आग में तो क्या होता है, वो राख बन जाता है। हाँ, तो काले से बदल करके गोरा बन जाता है ना, थोड़ा तो उसकी काली खत्म हो जाती राख, तो काले कोयले से तो माना थोड़ी तो परिवर्तन है उसके रंग में, तो कोयला राख बन जाता है। फिर सोना डालो तो उसका पहले लोहा निकलेगा, तांबा निकलेगा, चांदी निकलेगी, ये सब एक एक करके पिघलते जाते हैं जो भी उसमें धातु पड़े हैं, और वो सोना एकदम शुद्ध बन जाता है, कंचन जिसको कहेंगे, और वो नरम हो जाता है, उसको मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। इसीलिए बाबा कई बार जो पुराने बच्चे हैं बाबा उनके लिए कहते हैं, क्योंकि बहुत समय उन्होंने ज्ञान लिया, 25 साल 30 साल 50 साल 70 साल से बाबा के हैं और निर्विघ्न चल रहे हैं, माया जीत बन के चल रहे हैं, तो बाबा उनको बहुत सुंदर टाइटल देते हैं, बहुत सुंदर वरदान, ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी जो है वो सच्चा सोना है। क्योंकि कितनी आग में तपे होंगे, कितना सहन किया होगा, हर कदम कदम पर सहन किया होगा, लौकिक का सहन किया होगा, अलौकिक का सहन किया होगा, बड़ों का किया होगा, छोटों का भी किया होगा, आजकल छोटों का भी सहन करना पड़ता है ना, खाली बड़ों का नहीं, छोटों का भी सहन करना पड़ता है। कितना सहन किया होगा, कितना समाया होगा, कितना अपने आप में परिवर्तन लाया होगा, कितना बदलते बदलते फिर भी माया जीत रहे, माया को हराने का मौका नहीं दिया और चलते आए अब तक भी चलते आ रहे हैं, तो वो तो प्राइज के अधिकारी है। तो ओल्ड इज गोल्ड इंग्लिश में कहते हैं, बिकॉज इट कैन मोल्ड, वो मुड़ सका, अपने आप को मोड़ सका और चलता गया आगे, तो वो बच गया। बताते हैं ना, कोई तूफान आता है तो जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं ना, एकदम अभिमानी होके खड़े होते हैं पेड़, तो वो पेड़ तो गिर जाते हैं जब तूफान आता है, कितने गिरे हुए पेड़ मिलते हैं। लेकिन जो झुकने वाले पेड़ होते हैं वो बच जाते हैं, जो झुकते नहीं वो गिर जाते हैं। अकड़ के चलने वाले तो दे अभिमान के वश होते हैं, ऐसे कहेंगे, तो माया भी कम नहीं है उनके आगे, अपने को महारथी समझते हैं लेकिन माया भी कम महारथी बन के नहीं आती है। बाबा कितनी बार मुरली में कहते हैं, जैसे शिव बाबा की ब्रह्मातन में प्रवेशता होती है, माया की भी प्रवेशता होती है ना, पता ही नहीं चलता प्रवेशता, जैसे ब्रह्मा बाबा को पता ही नहीं चला ना कैसे शिव बाबा आए, तो माया भी जब किसमें प्रवेश होती पता नहीं चलता है तो कैसे आ जाती है। लेकिन जो इतने पुराने होंगे वो बहुत मजबूत है और सच्चे सोने हैं, परंतु जो नए हैं वो फिर कहते हैं, बाबा हमने क्या भूल की जो हम इतना लेट आए, हम भी जल्दी आते होते तो हम ये सब सुख पाते जो पुरानों ने पाया है, बाबा मम्मा को हमने देखा नहीं, दादी जी को भी देखा नहीं, दीदी को देखा नहीं, हाँ बहुत हम लेट आए हैं, बाबा क्यों हम लेट आए, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, इसमें भी कल्याण था, अगर बहुत जल्दी आते और माया का तूफान आकर आपको हरा देता तो हाँ तो अच्छा है लेट आए, कोई बात नहीं, अभी तो देख रहे हो ना दुनिया की हालतें। अभी दादी जान की एक बार बता रही थी, पहले आते थे, कई आते थे, कोर्स करते थे, थोड़ा चलते थे, फिर माया के वश हो जाते थे, अभी नहीं हो रहे, अभी जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो पक्के बन जाते हैं, अभी माया के वश इतना नहीं हो रहे हैं। क्योंकि माया भी ढीली पड़ती जा रही है, समझती जा रही है कि ये तो अभी हमारे वश से गए ये हमारे नहीं होंगे, तो इसीलिए माया ढीली होती जा रही है, उसको पता है मेरा राज्य अभी जा रहा है। लेकिन तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो नए आते हैं तो उनको भी सोचना नहीं चाहिए ज्यादा, बाबा उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स क्या देते हैं? तो बाबा कौन सा वरदान देते हैं नयों को? लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। भले लेट आए, पर लेट आए हर जाने, अब फास्ट जाओ, लास्ट आए हो पर फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हो। क्यों फर्स्ट आ सकते हो? क्योंकि अभी तक किसी को नंबर मिला ही नहीं है। मिला है किसी को नंबर? किसी को भी नहीं मिला है। सेकंड लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा वो डिक्लेयर हुआ है? पता ही नहीं। आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, नहीं बन सकते? हाँ नहीं बन सकते? बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। सब कुर्सियां खाली है, सब कुर्सियां खाली है। जैसे वो खेल करते हैं ना कुर्सियों का, तो म्यूजिक बज रहा है, कुर्सियां सब खाली है, सब चल रहे हैं, चल रहे हैं। अब कब म्यूजिक बंद होगा? जो होशियार होता है उसको कुर्सी मिल जाती है, जो बेचारा इधर उधर ही देखता रहता है तो कुर्सी उसकी चली जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं होशियार बनो, किसी को मत देखो, बस बाबा को देखो, बाबा को देखो, वर्षे को देखो, और किसी को नहीं देखो तो कुर्सी मिल जाएगी। ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो देखा तो गई आपकी कुर्सी गई। तो इसीलिए ख्याल मत करो ये, और कुछ भी करे मैं क्या कर रहा हूँ अपने को देखो, तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट चले जाएंगे। इसीलिए दोनों प्रकार के बच्चों को बाबा कहते सोचना नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप में से कई होंगे जिन्होंने, चलो बाबा मम्मा को तो नहीं देखा पर दादी जी को भी नहीं देखा, जिन्होंने दादी जी को नहीं देखा वो हाथ उठाओ, देखो कितने हैं। दीदी को तो बिल्कुल ही नहीं देखा होगा, जिन्होंने दादी को देखा पर बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी को नहीं देखा वो हाथ उठाए। अच्छा तो देखो, तो वो तो हमारे सामने उदाहरण थे, लेकिन फिर बाबा कहते हैं हमको अब बाबा समान, मम्मा समान, दादियों समान बनना है। हाँ, तो जैसे अगर बनेंगे तो हमको देख करके फिर और बनेंगे। तो इस बट्टी का लक्ष्य क्या है? सबसे पहला लक्ष्य तो यही है कि अपनी अंदर शक्ति जमा करनी है। शक्ति कैसे हमारी व्यर्थ जाती है? हमारे बोल से बहुत व्यर्थ जाती है। आज भी बाबा ने कहा तुम मधुबन में आए हो तो यहाँ पर झरमुई झंगमुई की कोई बातें नहीं, गृहस्थी की बातें, दुनिया की बातें, राजनीति की बातें, धंधे की बातें, नौकरी की बातें, दोस्तों की बातें या और किसी ब्राह्मणों की भी बातें, वो यहाँ नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। आप मोए मर गई दुनिया, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए दुनिया ही मर गई, मरने के बाद सब कुछ भूल जाता है। तो इसी प्रकार बाबा हमें कहते हैं यहाँ आए हो बस उस दुनिया से मर जाओ। हो सकता है कि याद आएगा ये चार दिन आपका ये मोबाइल बंद हो सकता है? आपको कहा तो होगा कि भाई ये चार दिन मोबाइल मत चलाओ, आपका आवाज नहीं आना चाहिए हॉल में। अभी भी देखा आवाज आ रहा था किसी न किसी का, ये मोबाइल की आवाज बिल्कुल नहीं बजनी चाहिए हॉल में। और चलो थोड़ा कुछ काम होता है तो आप भले फोन करो, परंतु घर वालों को बोल दो आज ही रात को मुझे चार दिन फोन नहीं करना, मैं तो स्वर्ग में हूँ। एक भाई अपना अनुभव बता रहा था, बाबा ने मुरली में कोई कहा होगा उस दिन कि तुम बच्चे अभी सब जैसे स्वर्गवासी हो, स्वर्गवासी हो। तो उसने घर में फोन किया, मैं तो स्वर्गवासी हो गया, मैं तो स्वर्गवासी हो गया। अरे क्या स्वर्गवासी हो गया? स्वर्गवासी का मतलब मालूम है? तो क्या स्वर्गवासी बना मैं स्वर्ग में आ गया? तो कहा नहीं नहीं स्वर्गवासी बना मर गया। कोई मर जाता है तो उसको क्या, उसके लिए क्या कहते हैं? स्वर्गवास हुआ। या कोई वे कहते हैं मरने के बाद ही भगवान मिलता है, स्वर्ग मिलता है, दोनों ही मरने के बाद ही मिलते हैं। कोई मर जाता है तो कहेंगे भगवान के पास गया, जिंदा है थोड़ी कहेंगे भगवान के पास गया, मरने के बाद ही भगवान के पास गया या स्वर्ग गया। तो ये दोनों ही मरने के बाद ही मिलते हैं, भगवान भी और स्वर्ग भी। तो यहाँ आपको दोनों ही मिल जाएगा, भगवान भी मिला और स्वर्ग भी मिला, तो उसके लिए तो मरना पड़ेगा। पर यहाँ बाबा कहते जीते जी मरना है, वो मरना नहीं है, वो काशी करवट खाते हैं फिर भी जन्म तो लेना ही है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, इतने तक भूलो जो ये देह भी याद न रहे, इतना भूल सकते हैं देह भी याद न रहे। देह भी कितना समय लेती है, वो तो करना ही है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि नहीं रखना है, लेकिन देह का ही चिंतन वो नहीं हो। हाँ, आत्मा का चिंतन जरूर हो, आत्मा का निरीक्षण हो। आज भी बाबा ने वरदान में क्या कहा कि चेक और चेंज। कई चेक तो करते हैं, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरे अंदर ये अवगुण है, पर चेंज करो ना, कैसे करो, नहीं होता तो दिल शिकस्त हो गए, क्योंकि चेंज ही नहीं कर सकते। दूसरा देखो कितना कितनी तपस्या कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, अरे करो ना, किसने मना किया, करो, ये कर रहा है मैं नहीं कर रहा तो करो, अब यहाँ तो किसी को रोक नहीं है, यहाँ कोई कंपटीशन है क्या कि भाई ये ज्यादा कर रहा है ये कम कर रहा है, नहीं, सब कर सकते हैं। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात सुनाई कि सतयुग में कोई नंबर नहीं होते हैं, स्कूल में नंबर नहीं होते हैं, जैसे यहाँ नंबर होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सतयुग में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? हाँ, वो तो कंपटीशन दिलाते हैं ताकि ये जल्दी करे जल्दी करे, वहां तो नंबर की तो बात ही नहीं है। सब प्यारे हैं, सब एक साथ हैं, सब चल रहे हैं, सब आगे दौड़ रहे हैं। इस पर एक कहानी मुझे याद आई कि कहानी क्या है कि एक बार किसी गांव में एक व्यक्ति गया तो बहुत सारे बच्चे थे, तो उसने उस बच्चों की परीक्षा ली कि इनमें कौन होशियार होगा। तो उसने क्या किया, इतना सारा फल का टोकरा वो दूर रखा और बच्चों को कहा कि बच्चे अभी लाइन में खड़े हो जाओ और दौड़ो, और जो उस फल के टोकरे पर पहले पहले पहुंचेगा सारा फल उसका। तो अभी क्या हुआ, सब खड़े रहे लेकिन सब एक दो को देख रहे हैं। तो क्यों एक दो को देख रहे, आपको तो वहां देखना है। तो कहा कि तो बर कुछ बोला नहीं, अच्छा दौड़ो। तो क्या किया, सब ने अपना एक दो का हाथ पकड़ लिया, एक दो का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके दौड़े एक साथ। अब सारे एक साथ ही दौड़े हाथ पकड़ करके तो पहुंचेंगे तो सब एक साथ ना। तो सब एक साथ पहुंच गए, 10 बच्चे थे तो सब एक ही साथ पहुंच गए क्योंकि हाथ पकड़ करके दौड़े। तो उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने कहा कि भाई जो पहले पहुंचेगा उसका सब कुछ, तो ऐसे क्यों हाथ क्यों पकड़ा। तो कहा कि अकेला, हर एक ने सोचा अकेला मैं थोड़ी इतना फल खाऊंगा, हम सब मिलकर खाएंगे, हम सब मिलकर खाएंगे, तो अकेला एक ले लेगा तो बाकियों को क्या मिलेगा, इसलिए हम सब मिल करके खाएंगे। तो सब मिल करके हम दौड़े। अब ये भी कितनी बड़ी शिक्षा मिली उस व्यक्ति को, शिक्षा मिली, कंपटीशन ऐसी नहीं रखनी होती है, भले हेल्दी कंपटीशन होती है पर ये तो नहीं है किसको गिरा करके आगे बढ़ना है। हाँ, कई ऐसे करते, इसको गिराओ इसको गिराओ, हाँ ठोकर लगे और मैं आगे बढ़ूं, तो ये तो नहीं है ना। और सब मिल करके करे तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही अच्छा है। तो बाबा भी कहते हाँ भले लक्ष्य रखो परंतु एक दो को मत देखो। एक दो को देखना है तो किस रूप में देखो, अगर देखना भी है किस रूप में देखना है, हाँ आत्मा साथी है मेरे जैसा है, क्योंकि मेरे से कम है तो थोड़ा अभिमान आएगा, और वो मेरे से थोड़ा ज्यादा है तो हीनता आएगी। अब दोनों ही नहीं लाना है, बस आप अपने में मस्त रहो और बाबा में मस्त रहो। अगर देखो भी तो ये सब मेरे भाई है, सब आत्माएं हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको चार दिन रहना है। कोई कंपटीशन नहीं, मैं 2 बजे उठूंगा, देखना मैं सबसे आगे आऊंगी। यहाँ कोई प्राइज वाइज मिलने वाली नहीं है, चिंता नहीं करना। बस अपने आप को देखना है, बाबा को देखना है, और कितना मैं जमा कर रहा हूँ वो हर एक अपने में देखे। और उसके लिए ऐसे नहीं कि बिल्कुल बात ही नहीं करनी है, भले करो, परंतु जितना कम से कम 10 शब्दों के बदले अगर 2 शब्दों में काम हो जाएगा तो 4 शब्द भी मत कहो। और कई तो इतने पक्के होते हैं, तो हमने देखा कि वो बिल्कुल नहीं बोलते, अगर जरूरी है तो कागज में लिख के देते हैं, मुख से नहीं बोलते। लेकिन अभी कागज वहां नहीं है तो क्या करेंगे, चलो कागज रखो भाई, लिख के देना है। परंतु कई बार इसमें दूसरे थोड़े परेशान भी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समझो आप खाली इशारे से कुछ कह रहे हो, ऐसे ऐसे, वो समझे क्या बोल रहा है, बोलो ना, अब बोल ही नहीं रहा है, बस ऐसे ऐसे, तो ऐसा क्या समझेंगे। वो गूंगे होते हैं ना, बहरे होते हैं, तो बहरे होते हैं तो उनकी भाषा अपनी होती है, तो उनके साथ ऐसा होता है, हम ना गूंगे ना बहरे हैं। लेकिन चलो हम मुख को बंद कर रहे हैं, पर ऐसे नहीं कि नहीं बोलना है, नहीं तो दूसरे डिस्टर्ब होते हैं। हमने देखा एक बहन थी, उसने कहा मैं तो 8 दिन मौन रखूंगी, बोले ही नहीं, बोले नहीं कुछ, उनसे कोई उनसे पूछे तो ऐसे ऐसे ऐसे, अभी क्या बोल रही, बोलो ना एक शब्द बोलो ना, नहीं अभी कोई नहीं समझे, तो दूसरों को गुस्सा आ जाता था कि ये बोलती क्यों नहीं, तो बोले ना गूंगी थोड़ी है। तो ऐसी भी बात नहीं है, परंतु अंतर में सोचना नहीं, ये नहीं कि सोच तो बहुत चल रहे और मुंह को केवल बंद रखा है। तो मुख का मौन केवल नहीं है, कौन सा मौन है, हाँ मन का मौन। तो मन का मौन माना ज्यादा विचार भी न चले, और ज्यादा विचार चल रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, मुख से बोल नहीं रहे हैं, दूसरों को परेशान कर देंगे, सच्ची बात है। तो दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के भी निमित्त नहीं बनना है, क्योंकि मेरा तो मौन है, मुझे बोलना नहीं है, तो मन तो खूब चल रहा है और मुख को जबरदस्ती बांध के रखा है नहीं बोलना है, ऐसा भी नहीं हो। पर बिल्कुल मन का मौन, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, हाँ जो जरूरी काम है क्यों नहीं, मना नहीं है, तो आपकी बहुत एनर्जी की बचत होगी। ये बचत लाओ, क्योंकि अभी बाबा कहते हैं आगे चल करके ऐसा समय आएगा जो आपके पास जो कुछ है वो सब आपको देना होगा, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलने वाला है, इतनी प्यासी आत्माएं आपके पास आएगी और उनको आपकी दृष्टि से, आपके 2 शब्दों से, आपकी वृत्ति से, उनको भले थोड़े टाइम के लिए भी, लेकिन एक बहुत बड़ा आश्वासन मिलेगा, बहुत शक्ति मिलेगी। उतने ही के वो प्यासे हैं, जैसे बहुत प्यासा हो लेकिन उनको एक बूंद भी मिल जाती है, तृप्ति हो जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते आगे चल करके वो समय आएगा, अभी तो फिर भी सब सहज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है संसार, ठीक चल रहा है, खाने को भी मिल रहा है, पीने को भी मिल रहा है, पहनने को भी मिल रहा है, पानी भी है, सब कुछ है, ठीक है, मौसम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। पर आगे चल करके ये सब बिगड़ने वाला है। केवल यही नहीं, आगे चल करके भटकती आत्माएं भी बहुत आएंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इतनी अंदर में शक्ति भरनी है जो आपकी शक्ति दाता बन करके सबको दे मिले, और उसके लिए यहाँ पहले भरपूर होना है। यहाँ किसी अन्य की सेवा की जरूरत नहीं है, आप अपनी सेवा करो। हो सकता है आपको कहा जाए भोजन परोसने में मदद करो, या कुछ पिछले ग्रुप में तो ऐसे था कि दस दस को ये भी मुकरर किया था आप नाश्ता दो, यहाँ है क्या ऐसे, यहाँ कहा है कि नहीं? सेवा के लिए तो नहीं कहा है ना कि दस जनों को सेवा करनी है, नाश्ता देने खिलाने की, भोजन खिलाने, वो सब दूसरे हैं सेवा करने वाले। ठीक, तो आपको तो कुछ भी नहीं करना है, बस देवता बन करके थाली में जो भोजन आए वो स्वीकार करना है बस, और कोई भी और स्थूल चीज कुछ नहीं, सब कुछ बना बनाया आपको यहाँ मिलेगा। हाँ, थोड़े कपड़े धोने पड़ेंगे कि लेकर आए हो चार दिन के कपड़े कि धुलाई नहीं करने पड़े? हाँ, लेके आए तो नहीं तो फिर धुलाई करो बैठ के, उसमें भी टाइम लगता है, फिर बाथरूम में ज्यादा टाइम लगेगा, फिर बाल्टी में भर के रखेंगे तो फिर बाल्टी की कमी हो जाएगी, कोई कहेगा निकालो ये मुझे बाल्टी चाहिए, तो उसमें भी बोलना पड़े। इसीलिए सबके लिए सहज कर दिया, ये चार दिन के बाद फिर घर जा करके जो चाहिए सो करो। लेकिन यहाँ बिल्कुल एक तो स्टूडेंट बन के रहो, दूसरा सच्चे योगी बन के रहो। हाँ, थोड़ा माता यहाँ गया, आप नहीं, आप भले यही पीछे वाली माता यहाँ गया। तो योगी बन के रहो, स्टूडेंट बन के रहो, और बाबा से मुझे लेना है लेना है। अभी देने का संकल्प नहीं करो, भले मनसा सेवा की बात आपको कही जाएगी जिसमें सारी दुनिया को देना है, तो सारी दुनिया में को देना है तो सबको मिल जाएगा, लेकिन अभी ये लक्ष्य रखना है कि मुझे लेना है, मुझे भरपूर करना है, अपने आप को मुझे भरपूर करना है। ये भी नहीं सोचना है चलो यहाँ तो मैं भरपूर हो गई, फिर वहां गई तो खाली हो गई, तो ये भी नहीं सोचना है। वहां जाके खाली हो जाऊं, खाली हो गई तो ये अभी क्यों सोचती हो? एक बार एक बहन दादी जानकी के पास आई, दादी को कहने लगी कि दादी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम्स बताए। तो दादी ने कहा ये समस्या यहाँ क्यों सोच रही हो, यहाँ तो तुमको कोई समस्या नहीं है ना, ये तो वहां की बात है। तो कहती है दादी पर जाऊंगी वापस, वही तो देखना पड़ेगा, फिर वही तो सामना करना पड़ेगा। तो दादी कहती यहाँ बैठे तो वहां क्या सोच रही हो, यहाँ बैठे यहाँ भरो, इतना भरो, इतना भरो जो इतनी शक्ति आप में आ जाए जो वहां जाकर के वो समस्या होगी नहीं, क्योंकि आप आगे चले जाएंगे, आप ऊपर चले जाएंगे। जैसे हवाई जहाज का बाबा मिसाल देते हैं, कितने भी पहाड़ आए, कितने भी पेड़ आए, कितने भी मकान आए, कुछ भी सब है तो समस्या ना, लेकिन वो हवाई जहाज क्या हुआ, ऊपर चला गया, उन सब के ऊपर चला गया, तो कोई भी विघ्न उनको रोकेगा नहीं, सबके ऊपर चला गया। तो यहाँ इतना भरो जो इतनी शक्ति आप में आ जाए, जो वो शक्ति वहां आपके इतनी काम आए, जो वो जो विघ्न आपके सामने आया वो पिघल जाए, वो खत्म हो जाए, क्योंकि आपके संकल्प इतने श्रेष्ठ होंगे तो वो उनके संकल्प भी बदल जाएंगे। पता नहीं वहां जाऊंगी, वहां जाऊंगा क्या होगा, कैसे होगा, ये फिर सामने आएगा, ये माया आएगी, ये परीक्षा आएगी, अभी क्यों याद कर रहे हो, अभी तो भरो। आप मोबाइल चार्ज करते हो फिर कहते हो क्या कि फिर तो डिस्चार्ज हो ही जाएगा सारे दिन में, ऐसे सोचते हो क्या? इसलिए चार्ज ही नहीं करना है। कई कहते हैं ना हम सत्युग के देवता बनेंगे, फिर भी तो नीचे ही आना है ना, फिर सत्युग के देवता भी क्यों बने, नीचे तो आना ही है ना, बस हमको तो मोक्ष चाहिए, हमको तो इस दुनिया में आना ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं क्यों ऐसे सोचते हो, सत्युगी दुनिया में आना है तो बहुत अच्छी चीज है, चलो नीचे भी आए तो खेल समझो ना। कोई खिलाड़ी अगर खेलने मैदान में जाए और हाथ में बैट लेकर जाए तो कहेगा क्या बॉल आएगा तो मैं क्या करूंगा? अरे बॉल आएगा तो मारो, डरते क्यों, बॉल से डरना होता है क्या? फिर खिलाड़ी कहाँ के बनेंगे, बॉल को मारो उतना जोर से मारो कि छक्का हो जाए, चौका हो जाए, दौड़ो भगाओ जो फील्डर्स हैं, तो इसीलिए वो आपको कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके पास वो हथियार है। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि डरते क्यों, और अगर अभी शक्ति भर ली तो वो विघ्न विघ्न रहेगा ही नहीं, आप उनको पार कर लेंगे। क्योंकि योग अग्नि में तप गए तो सब बदल जाएगा, आपका भाग्य निखर जाएगा, ये अनुभव आप करेंगे। तो इसलिए यहाँ आए हो वहां का सोचना नहीं है, और किसी को देखना नहीं है। देखो ये बट्टी में आया, अभी तक सोया हुआ है, उठो 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 उठो, उठाना किसी को नहीं है, हर एक अपने आप उठे, उठाना नहीं है। और समझो उठाया और अभी उसकी कच्ची नींद है तो गुस्सा आएगा उनको, इसलिए किसी को नहीं उठाना है, किसी की दुआएं से बद्दुआ नहीं लेनी है, हर एक अपने आप उठे, हर एक रात को बाबा को कहकर सोए, दूसरे को नहीं कहे मुझे जगाना, बाबा को कहकर सोए। हाँ बाबा बताते ना, कई भाई बहन भी बताते हैं, तो बाबा को कह के सोया तो सवेरे बिल्कुल खटिया हिली, जैसे बाबा ने हिलाई। हाँ किसी और ने नहीं, बाबा ने हिलाई, बाबा ने उठाया, बाबा को कह के तो देखो। और अगर कोई ऐसी बात है, समस्या है घर की, वो बाबा को दे दो। बाबा को देना आता है, आता है ना सबको बाबा को देना, कि बाबा को मैं क्यों परेशान करूं मेरी समस्या देकर। बाबा कहते मुझे यूज करो, मुझे यूज करो, मैं आया हूं तेरी आपकी सेवा के लिए, सेवा पर आया हूं। उस दिन भी बाबा ने कहा मैं आप बच्चों के लिए नई दुनिया बना रहा हूं, कितनी बड़ी सेवा कर रहा हूं, तो बच्चों को कितना पढ़ा रहा हूं, गुलगुल बना रहा हूं, पावन बना रहा हूं, कितनी सेवा कर रहा हूं। तो सेवा का पूरा लाभ लेना है। और कोई और बात है बाबा को दे दो, बाबा ये चार दिन बिल्कुल मैं निरसंकल्प, आप ये संभालो। और सचमुच आप देखेंगे जैसे वहां पहुंचेंगे वो समस्या है ही नहीं, ये अनुभव करेंगे, भगवान का वरदान मिल जाएगा, क्योंकि वरदान भूमि में आए हो। तो ऐसी भूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, तपस्या भूमि, जहाँ और कोई बातें नहीं है संसार की, झरमोई जंगमोई कुछ भी नहीं है। हाँ अगर कोई करता भी है तो उनको भी इशारे से कह सकते हो, बाबा को याद कर, इशारे से, हाँ गुस्से से नहीं, इशारे से, हाँ इसमें की बात आपको कहा नहीं गया है कि ऐसे मत करो, हाँ ऐसे भी नहीं, इशारे से, प्यार से। तो आपका प्यार जरूर उसमें परिवर्तन लाएगा और उनका भी परिवर्तन होगा, आपका तो होगा ही। परंतु पहले होता था, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि बोर्ड लिख दो, शिव बाबा याद है, सत्युग का वर्षा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है, एक दो को इशारे से याद दिलाओ, शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है, तो ऐसे भले याद दिलाओ, पर कोई याद दिलाए तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्या हाँ याद है याद है। नहीं, थैंक यू, क्या कहना चाहिए, थैंक यू। तो इसीलिए हर एक को रिस्पेक्ट भी देना है, हर एक के आज्ञाकारी भी बनना है, और कम से कम शब्द हो, नहीं तो एकदम मौन, बस बाबा की याद, और कहीं आंख न जाए, किसी को देखना नहीं है। ये सच्ची तपस्या करनी है यहाँ चार दिन, और जो फ्री टाइम मिले, जो मुरली सुनी, जो क्लास की, इतने सारे क्लासेस आपको मिलेंगे हमारे वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा, सब अनुभवी भाई बहने आपको अपने अनुभव युक्त क्लास कराएंगे, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स निकाले हैं, तो वो उनको रिवाइज करो, अपना स्वाध्याय करो, मनन करो, चिंतन करो, और अपनी परीक्षा लो, मेरा मन और कहीं तो नहीं जा रहा है, मैं स्टूडेंट हूँ, भगवान का स्टूडेंट हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान मेरा टीचर है, उस ईश्वरीय नशे में रहो और स्टूडेंट बन करके पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तो देखो चार दिन के बाद आप ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल एक नया जीवन मिल गया, इतनी नवीनता का अनुभव होगा, एक अमिट छाप लग जाएगी। अरे मधुबन में जो मैंने भट्टी की ना, वो तो कमाल की थी, अभी भी याद करते हैं, पिछले साल भी जिन्होंने की थी अभी तक याद करते हैं, क्योंकि एक अमिट छाप, ऐसे छाप लगती है ना, कोई तो मिट जाती है, कोई तो मिटती नहीं है, वो छाप, अमिट छाप मधुबन की भट्टी से मिलती है, क्योंकि बाप दादा की छत्र छाया है, दादियों की दीदियों की छत्र छाया है, और यहाँ का बाबा मम्मा दादियों ने जो तपस्या की है वो माहौल है, यहाँ वातावरण है, उस वातावरण में आप पल रहे हैं, पलेंगे, तो इसीलिए उसका पूरा पूरा लाभ लेना है और ये लाभ अपने साथ लेकर जाना है और वहां पर जाकर भी इसको कायम रखना है, बैटरी डिस्चार्ज न हो। भले बाबा कहते हैं कि यहाँ पर बादल भरते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, फिर आना है, भले आओ पर बैटरी डिस्चार्ज नहीं करना वहां जाकर के, हाँ चार्ज ही रहे। और चार्ज ही रहेगी कैसे, जब कुछ भी हो जाए ना तो ये मधुबन का वातावरण याद रखना, मधुबन में हमने ये भट्टी की थी तो उस समय वो शक्ति आ जाएगी और वो शक्ति जैसे मिली फिर से बैटरी चार्ज हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत आप सभी को क्या कहें, स्वागत, मुबारक, अभिनंदन, धन्यवाद, जो कुछ कहना है सब है। ओम शांति। हमारी पूर्णिमा बहन आपका भी वेलकम, आइए।
ओम शांति। बहुत ही सरल भाषा में आदरणीय शीलू दीदी ने 4-5 दिन की भट्टी का लक्ष्य हम सभी के सामने रखा। साइलेंस में रहना है, कोई भी प्रकार के व्यर्थ में नहीं जाना है, मोबाइल अपना अपना क्या करना है, हाँ स्विच ऑफ रखना है, पूरा ही भट्टी की दिनचर्या का सेकंड सेकंड का लाभ उठाना है। तो इन सभी बातों को हम सभी के सामने बहन जी ने रखा है, हम सब इन बातों के ऊपर पूरा ही ध्यान देंगे और 5 दिन के बाद जब यहाँ से प्रस्थान करें तो अंदर से आत्मा महसूस करे कि मैं भरपूर होकर के जा रही हूँ। अभी हम सब के बीच में आदरणीय पूर्णिमा दीदी हैं, हम सभी उनके भी आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। बहन जी को सुनने से पहले कुछ एक सूचनाएं ध्यान से सुन लेंगे। आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था बड़े डाइनिंग हॉल में रखी गई है। अमृत वेले का योग सभी का यहाँ होगा, लेकिन अभी जैसे बैठे हैं वैसे नहीं, क्योंकि सब मधुबन निवासी सेवाधारी सब होंगे, तो इसलिए जो भी भाई बहने नीचे बैठ सकते हैं, बहुत तकलीफ है तो भले आप ऊपर बैठेंगे, बाकी नीचे बैठेंगे और नजदीक होकर के बैठेंगे, हाँ कल सवेरे अमृत वेले के टाइम पर, ताकि सभी इसके अंदर समा सके। अमृत वेले कोई भी भाई बहने बाबा के कमरे में, झोपड़ी में, या तो शांति स्तंभ, भले आप 2 मिनट के लिए चार धाम की यात्रा करेंगे, लेकिन यहाँ मधुबन समर्पित भाई बहनों के बीच में बैठ करके संगठन में तपस्या का बल भरना, उसका सुख कुछ अलग ही होता है। आप पूरा दिन भले चार धाम की यात्रा करते रहेंगे, लेकिन अमृत वेले का योग सभी का संगठन में यहाँ चलेगा। मुरली क्लास सबका ओम शांति भवन में रहेगा, 6:30 से 7 योग और 7 से 8 मुरली क्लास, और मुरली क्लास के बाद सारी सभा भले रोज उठ करके जाएंगी लेकिन हम नहीं उठेंगे, सबको मुरली के बाद 10 मिनट जरूर बैठना है। आप सभी को पूरे दिन की दिनचर्या, कोई भी सूचना या तो कोई भी आपसे पूछना करना हो, सारा ही कारोबार मुरली क्लास के बाद होगा, इसलिए कोई भी भाई बहने स्लोगन के बाद या तो 3 मिनट योग के बाद जब तक सूचना न मिले तब तक उठेंगे नहीं। आपकी दिनचर्या इस प्रकार रहेगी, 9:30 से 10 ये रोज की दिनचर्या है, रोज सवेरे 9:30 से 10 चार धाम की यात्रा करनी है, 10 से 10:30 यहाँ पर आपका टोटल दिन, सारे दिन का प्रोग्राम वो मेडिटेशन हॉल में ही रहेगा, हाँ सवेरे 10 से 10:00 तक का सिर्फ अमृत वेला यहाँ पर, और मुरली क्लास होगा
ओम शांति भवन में। बाकी टोटल पूरा दिन हम मेडिटेशन हॉल में ही यहाँ ही रहेंगे। 10 से 10:30 यहाँ पर क्रिएटिव योग होगा, अलग अलग विधि से आपको यहाँ पर योग कराया जाएगा। 10 बजे आप सभी यहाँ रोज पहुँचेंगे। 10:30 से 11:30 आपका पहला क्लास रहेगा। 11:30 से 12:45 ब्रेक रहेगी। 12:45 से 1 दूसरा क्लास होगा। फिर शाम को 4 से 5 एक घंटा चार धाम की यात्रा है। शाम का टाइम बहुत अच्छा साधना का होता है, इसलिए पूरा एक घंटा अलग अलग स्थान पर बैठ करके चारों ही धाम की यात्रा करनी है। 5 से 5:30 यहाँ संगठन में योग चलेगा, मेडिटेशन हॉल में ही। 5:30 से 6:30 तीसरा क्लास होगा। 6:30 से 7:30 शांति स्तंभ पर रोज योग चलेगा। 7:30 से 8:30 में आप भोजन स्वीकार कर लेंगे और रात्रि 9:45 से 10:45 तक आपका चौथा क्लास रात्रि क्लास होगा। ये दिनचर्या है। बाकी सभी को कहा गया है कि मोबाइल अपने अपने स्विच ऑफ रखेंगे। इतनी बड़ी हस्ती को सभा में कहना पड़े हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आज भी 2-3 भाई बहनों के मोबाइल बजे हैं, कृपया आप सभी इस बात पर ध्यान रखेंगे। लाइट और पंखा अपने अपने कमरों का सभी जब बाहर निकले तो बंद करेंगे। यज्ञ सहयोग जिन्हों का भी बाकी है वो भी पूरा कार्यक्रम यहाँ का पूरा होने के बाद यहाँ ही बैठेंगे और टीना बेन को जमा करा देंगे। जिन्होंने भी अभी तक बेज नहीं लिए हैं वो कविता बेन से टोली के बाद बेज स्वीकार करेंगे। अभी हम सभी आदरणीय बहन जी से वरदानी बोल सुनेंगे।
ओम शांति। विशेष आ कल्याणकारी संगम युगना समय आपने बधाज स्वयं शिव बाबाना अने साथे साथे ब्रह्मा बाबाना अलौकिक अने पारलौकिक बाळको बन्या छीए। एटले आपणे बधी आत्माओ भाग्यशाळी छीए के बाबाना बनीने आपणे पोतानो आ अलौकिक जीवन बनाव्युं छे। અને એનાથી પણ વધારે ભાગ્યશાળી આપણે બધા છીએ કે આજે બાબાની આ કર્મભૂમિ કે જ્યાં કરાચીમાં તપસ્યા કર્યા પછી બેહદની સેવાનું સ્થાન આ પાંડવ ભવનને નિમિત્ત બનાવ્યું અને પાંડવ ભવનની અંદર સાકાર બ્રહ્મા બાબા અને મમ્મા એ બંને રહીને આપણા આ બેહદના યજ્ઞને સંભાળ્યો અને તેની સાથે સાથે આ ભૂમિ ઉપર તપસ્યા કરી અને બધાને કરાવી અને અંતિમ પોતાની કર્માતીત સ્થિતિને પણ આજ ભૂમિ ઉપર પ્રાપ્ત કરી અને આજ ભૂમિ ઉપર અંતિમ 5 તત્વના શરીરને 5 તત્વમાં મેળવવાનું કાર્ય પણ આજ ભૂમિ ઉપર થયું અને સાથે સાથે એ જીવનની યાદગીરી અલગ અલગ 4 ધામની યાત્રા કે આપણે બધા ગમે તેટલી યાત્રા કરી હોય પરંતુ જ્યાં પરમાત્મા પિતાની અવતરણ ભૂમિ છે એ ભૂમિ ઉપર શિવ બાબાએ બ્રહ્મા બાબા દ્વારા જે કાર્ય કરાવ્યું એની આ યાદગાર ભૂમિ છે. અને એ યાદગાર ભૂમિમાં જ્યારે જ્યારે આ ભૂમિ ઉપર આવીએ છીએ ત્યારે બાબાના જે સંસ્મરણો છે અથવા તો બાબાએ બાળકોની સાથે રહીને જે જે કાર્ય કર્યા છે એ યાદ કરવા નથી પડતા, પરંતુ સ્વાભાવિક રીતે આપણા જીવનની અંદર એ યાદ આવી જાય છે. સૌથી પહેલા બાબા મા બાપના સ્વરૂપની અંદર જે અત્યારના બાબાનું જે હિસ્ટ્રી હોલ છે એ હિસ્ટ્રી હોલમાં બાળકોને મળતા અને તે વખતે એ અનુભવ થતો કે ખરેખર આપણા બધાના સાચા જે માતા પિતા છે એ જ છે કે જે આપણને અલૌકિક પાલના કરીને આપણું જીવન દિવ્ય અને અલૌકિક બનાવે છે. શિક્ષકના રૂપમાં હિસ્ટ્રી હોલની અંદર રોજ ટીચર બનીને શિવ બાબા બ્રહ્મા બાબામાં પ્રવેશ કરીને મુરલી ચલાવતા અને એ મુરલી દ્વારા આપણને ચારે વિષયોનું જે જ્ઞાન છે, જે ભણતર છે એ ભણાવીને આપણા જીવનનું જે લક્ષ્ય છે એ ત્યાં બેસીને પાક્કું કરાવતા અને સાથે સાથે સતગુરુ બનીને એમણે આપણા જીવનની અંદર જે બે મહાન મંત્ર આપ્યા છે, મન મના ભવ અને મધ્યાજી ભવ, જેના દ્વારા આપણે મુક્તિ અને જીવન મુક્તિ બંનેની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ અને એ સદગુરુ દ્વારા આપણને આપણા જીવનની જે ભક્તિ માર્ગની ઈચ્છા હતી એને પૂર્ણ કરવા માટે સદગુરુનું સ્વરૂપનો અનુભવ કરાવે છે. અને સાથે સાથે આ જે ભૂમિ છે એ આપણા જીવન માટે એક દર્પણની ભૂમિ છે, શીશ મહેલ છે અને એ શીશ મહેલની અંદર આપણે બધા આજે આવ્યા છે અને ચાર દિવસ સુધી આપણે આ શીશ મહેલમાં રહીશું અને તે વખતે આપણને જે આ ચાર દિવસ જીવનના તપસ્યા કરવાના મળ્યા છે એની અંદર આપણે બધા જ પોતાનું આત્મદર્શન એ કરીશું અને આપણે જેવા છે તેવા પ્રતિબિંબ આપણને પોતાને દેખાય, કેમ કે આપણને આપણા જીવનની વાતો કોઈ પણ જ્યારે કહેતું હોય ત્યારે આપણને ગમતું પણ ન હોય અથવા તો દેખાતું પણ ન હોય, પરંતુ આ મધુબનની જે ભૂમિ છે એ આપણા માટે જ્યારે શીશ મહેલ છે ત્યારે આપણે મૌનમાં રહી અને એ અભ્યાસ કરીએ કે આપણે જેવા છીએ તેવા આપણે પોતાની જાતને જોઈ શકીએ અને એ જોયા પછી બાબા મુરલી દ્વારા આપણને શું કહે છે અને આપણે આપણા જીવનની અંદર શું ધારણ કરવાનું છે, શું પરિવર્તન કરવાનું છે એ લક્ષ્યને આપણે પાકું રાખીએ અને એની સાથે સાથે એ જ પરમાત્મા પિતા કે જે આપણને આ સભાની અંદર આવીને ભણાવે છે ત્યારે એ હંમેશા યાદ કરાવે છે કે આ જે સભા છે એક સામાન્ય સભા નથી પરંતુ ઇન્દ્ર સભા છે. તો ઇન્દ્ર સભાની અંદર કોઈ પણ એવી આત્મા એ બેસી નથી શકતી, પણ આપણે બધા તો બાબાના પાક્કા અને જૂના બાળકો છીએ એટલે એ તો આપણે નહીં વિચારી શકીએ. આપણે તો ભાગ્યશાળી છીએ કે એ ઇન્દ્ર સભામાં બેસવા માટે આપણે બધા લાયક બાળકો છીએ, પાક્કા બાળકો છીએ અને મજબૂત બાળકો છીએ. પણ સાથે સાથે આપણી અંદરની રહેલી સૂક્ષ્મતાને જોઈને આપણા જીવનમાં એ પરિવર્તન લાવવાનું છે આજે આપણે બધા ભાગ્યશાળી આત્મા છીએ કે આ ભૂમિ ઉપર આપણને 4 દિવસ જે તપસ્યા કરવા મળે છે, એ તપસ્યાનો આપણે બધા જ પૂરો લાભ લઈએ અને સાથે સાથે પ્રાપ્તિનો અનુભવ કરીએ. આપણા બધાની સમક્ષ શશીબેન આવી ચૂક્યા છે, એટલે આપણે બધા જ એક હાથની તાળીથી એમનું સ્વાગત કરીશું. ઓમ શાંતિ.
હમ સભી બહોત હી ખુશ નસીબ હૈ જો ભઠ્ઠી કે શુભારંભ મે હી યજ્ઞ કી વિશેષ આત્માઓ કા હમ સબકો લાભ મિલ રહા હૈ. અભી હમ સભી કે બીચ મે આદરણીય શશી દીદી હૈ. બાબા કા એસા ગુપ્ત રતન હૈ કે જિન્હો કી પ્રત્યક્ષતા દેશ વિદેશ મે હૈ. આપ બાબા કે વિશેષ સંદેશી ભી હૈ. સદગુરુવાર કો બાબા કે પાસ જાકર કે પરમાત્મા સંદેશ હમ સભી કે લીએ આપ લાતે હૈ. સાકાર બાબા મમ્મા કી આપને બહોત નજદીક સે પ્યાર ભરી પાલના લી હૈ. ઓર દેશ વિદેશ કે જો ભી બાબા કે બચ્ચે ખાસ ફોરેનર્સ આતે હૈ, ઉન ફોરેનર્સ કી દેખભાલ, ઉન્હો કે પ્રોગ્રામ, ઉન્હો કા એકોમોડેશન, તો વો સબ આપ સંભાલતે હૈ. એસી વિશેષ યજ્ઞ કે રતન આજ હમ સભી કે બીચ મે હૈ. સ્પોર્ટ્સ વિંગ કે દીદી નેશનલ કોઓર્ડિનેટર હૈ. આજ હમ સબ કો યજ્ઞ પાલના કી અનુભૂતિ કરાને કે લીએ પધારે હૈ. હમ સભી ફિર સે દીદીજી કા સ્વાગત કરતે હૈ, સ્વાગત કરતે હૈ, સ્વાગત કરતે હૈ. આદરણીય શશી દીદી.
ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. મધુબન પ્યારે બાબા કી તપસ્યા ભૂમિ સેવા કી કર્મ કી બીજ સ્વરૂપ ભૂમિ પ્યારી પ્યારી દાદીઓ કે ત્યાગ તપસ્યા આ સેવા કી ભૂમિ મે આપ સભી કા બાપ દાદા. બાપ દાદા દાદિયા સર્વ મધુબન નિવાસી ભાઈ બહેનો કી તરફ સે બહોત બહોત હાર્દિક સ્વાગત હૈ. ક્યોંકિ મધુબન તપોભૂમિ મે જિસ કિસી કો ઇતના સમય રહેને કા ચાન્સ મિલે તો ઉસસે બઢકર કે ભાગ્ય ક્યા હો સકતા હૈ. પિછલે સાલ ભી કુછ બઠિયા રખી થી, ઇસ સાલ ભી જો બઠિયા રખી હૈ ઇસમે આપને જલ્દી સે હી અપના નંબર લગાયા ઓર એસે સમય પર લગાયા જબકિ મોસમ બડા અચ્છા હૈ ઓર ચારો તરફ શિબિર ભી હૈ, બઠિયા ભી ચલ રહી હૈ. લેકિન આજ કે બઠ્ઠી કે શુભારંભ મે બાપ દાદા પ્યારી પ્યારી દાદી દીદી મમ્મા ઓર એડવાન્સ પાર્ટી કે જો ભી હમારી દાદિયા યા વરિષ્ઠ ભાઈ ગયે હૈ વો વતન સે બઠ્ઠી કા સુંદર દ્રશ્ય દેખકર ના જાને કિતને ખુશ હો રહે હોંગે. ઓર આજ હી આપકે ઉપર સ્નેહ કે પુષ્પો કે વર્ષા વતન મે બેઠે કર રહે હૈ. મુજે યાદ આતા હૈ કે પ્યારે પ્યારે સાકાર બાપ દાદા જબ ભી બાબા કે લાડલે બચ્ચે આતે થે તો ઉનકો બહોત તપસ્યા કા અનુભવ કરાતે થે. બાબા કહેતે થે યે મધુબન લાઇટ હાઉસ હૈ, યહાં લાઇટ હાઉસ કી લાઇટ સારે વિશ્વ કે કોને કોને મે પહોંચેગી. બાબા ખુદ ભી ખડે હોકર કે બિલકુલ લાઇટ હાઉસ જૈસે દિખાઈ દેતે થે ઓર બાબા કો દેખતે હી એસા લગતા થા કે સારે વિશ્વ કે અંદર યે લાઇટ પહોંચ રહી હૈ. સાકાર બાબા કે બાદ
दीदी और दादी, इन्होंने भी इस मधुबन भूमि पे हमेशा भाई बहनों का बाप दादा के समान बहुत खुले दिल से स्वागत करते। दादी हमेशा कहती थी, आओ आओ बाबा के घर में आओ, और दादी बुलाती थी, बहुत स्नेह भरी दृष्टि देती थी, दृष्टि के साथ साथ सबकी पालना भी करती, और पालना के साथ साथ दादी कहती थी कि मधुबन भूमि में आए हैं तो अपनी झोली भर के जाओ। तो आज मैं वो सीन याद कर रही थी कि कैसे बाबा ने दीदी मम्मा और दादियों ने बैठ करके ऐसी भूमि पर इतनी तपस्या की है, और इस तपस्वी भूमि का रिजल्ट है कि देश विदेश के अंदर सेवा केंद्र खुलते जाते हैं, बाबा के बच्चे आते जाते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे वो कितने सौभाग्यशाली हैं जिनको मधुबन में रहने का मौका मिलता है। पहले सारा कारोबार यहीं था, हर प्रकार का प्रोग्राम यहाँ चलता था। मैं समझती आप में से बाबा को तो किसी ने देखा नहीं होगा, पूर्णिमा बहन को छोड़ के, बाकी दीदी को किसने देखा है? दो चार हैं। दादी को, बड़ी दादी को तो बहुतों ने देखा है। तो बाबा हमेशा उस समय यहाँ पर ही सारे प्रोग्राम्स होते थे, ब्राह्मण भाई बहनों की भट्टी बाबा से मिलने का, और शिविर, विदेशियों का आने जाने का, सब यहाँ होता था। बाबा ने मुरली में भी कहा कि आगे चलकर के बाबा के बहुत बच्चे आएंगे, और आबू आपका सारा हो जाएगा। तो धीरे धीरे स्थान कम होने लगा, और फिर ज्ञान सरोवर बना, फिर शांति वन बना, और वो शांति वन भी अभी छोटा पड़ जाता है। लेकिन इस स्थान पर जो भट्टियों का प्रोग्राम बाप दादा ने खास अपनी दादी रतन मोहिनी जी, दादी जानकी जी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन को विशेष प्रेरणा दे करके ये जो प्रोग्राम बनाया है, तो इसके अंदर हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। तो इस भट्टी के अंदर आप सभी का स्वागत के साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप सभी साकार बाबा मम्मा और दादियों और एडवांस पार्टी की जितनी भी दादियां हैं और वरिष्ठ भाई हैं, उनकी पालना का अनुभव करेंगे। और साकार में जो हमारी दादियां हैं और वरिष्ठ भाई बहने जो हैं, उनके द्वारा ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करेंगे। और जब मधुबन में हम आते हैं, आते केवल नहीं हैं, लेकिन जैसे ही कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि साकार बाबा हमारे सामने खड़े। कई भाई बहने कहते हैं, हमने साकार बाबा को नहीं देखा है। बाबा तो आपको गोदी में बिठा के बैठे हैं, और आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि बाबा को नहीं देखा है। बाबा हमारे साथ है, बाबा हाथ पकड़ के चला रहा है, बाबा हमारी पालना कर रहा है, बाबा दृष्टि दे रहा है, बाबा टोली खिला रहा है। ये सारे के सारे अनुभव आप इस भट्टी में करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको एक एक बताती हूँ। पहले जैसे ही हम पांडव भवन के आंगन में आते हैं, तो आंगन में आते ही मुझे याद आ रहा है कैसे बाबा और दादियां आंगन में खड़े होते थे, आओ बच्चे करते, और बाबा के इधर, अब दादी के कमरे के बाहर आपने एक फोटो देखा होगा, साकार में बाबा ऐसे कर रहे, आओ मेरे लाडले बच्चे। तो आज भी बाबा वतन में बैठे हुए भी इस मधुबन कर्म भूमि पर बच्चों को आमंत्रित करके अपनी पालना दे रहे। और यही महीने थे, खास करके जून का महीना मुझे याद आता है, मई जून का, लेकिन अप्रैल तो अभी पूरा हो रहा है। अमृत वेले के बाद साकार बाबा और दादियां, हमारे वरिष्ठ भाई बहने इधर दादी के कमरे, ये जो दादी का कमरा, दीदी का कमरा है, वहां बाबा खड़े हो जाते थे। खड़े होकर के इस आंगन में बाबा एकदम एंजल की तरह चलते, फिर निभय भाई के ऑफिस के बाहर सीढ़ियों पे खड़े हो जाते थे, वहां सबको दृष्टि देते हुए बाबा कहते थे फरिश्ते बनके सारे वर्ल्ड के अंदर घूमो। फिर थोड़ा बाबा आगे कदम बढ़ाते हुए हमारे ऑफिस के बाहर जो थला है उस समय छोटी सी पहाड़ी थी, बाबा उसके ऊपर खड़े होकर के बाबा कहते थे सारे विश्व को साकाश दो। समय आएगा कि देश विदेश के बच्चे यहाँ आएंगे, ये उस समय की बात है जो हम कुछ समझ नहीं पाते थे, लेकिन बाबा ने ऐसा अनुभव करा। तो इस भट्ठी में जब आप आंगन में चलेंगे तो आप ये अनुभव करेंगे कि बाबा साथ चल रहा है, बाबा हमारे बीच में है, बाबा हमें अनुभव करा रहा है। और दूसरी बात, जब आप हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, साकार बाबा पहले तो मुरली वहां चलाते थे जहां ईशुदादी का ऑफिस है, वहां स्थान छोटा हुआ, बाबा फिर हिस्ट्री हॉल में मुरली चलाते थे। और बाबा की गद्दी और दो गद्दी होती थी, एक गद्दी पे मम्मा, एक गद्दी पे कोई ना कोई बहन बैठती थी योग कराने, और बाबा मुरली चलाने के बाद बीच में खड़े हो जाते थे लाइट हाउस की तरह, और खड़े होकर के एक एक को दृष्टि देते थे, और दृष्टि लेते लेते बच्चे उड़ गए वतन में। आ इतने अच्छे अनुभव कराते थे बाबा, तो आज हिस्ट्री हॉल भी हमें वो अनुभव कराता है कि बाबा कैसे हमको दृष्टि से निहाल कर रहे। फिर जब आप शांति स्तंभ पर जाएंगे तो शांति स्तंभ पर जाते ही बाबा एकदम वैसे भी साकार में एकदम हाईएस्ट पर्सनैलिटी, बाबा हजारों के बीच में खड़े हो जाएं, दूर से चमकते हुए दिखाई देते थे, कोई दूर से पहचान जाता था कि एक बहुत सुंदर फरिश्ता है। तो शांति स्तंभ बाबा के लाइट हाउस के और माइट हाउस के और त्याग और तपस्या की कहानी सुनाता। लेकिन जहां आप भट्ठी के लिए अभी बैठे हैं या मेडिटेशन हॉल, इस हॉल की विशेषता बहुत जबरदस्त विशेषता है। जब बाबा अव्यक्त हुए तो पहले बाबा अव्यक्त बाबा शुरू में बाबा के कमरे में आए, और जब बाबा के कमरे में जाते हैं बाबा कहते बच्चे निश्चिंत रहो मैं बैठा हूं। एक सेकंड के अंदर हर प्रकार की संकल्पों से दूर कर देते हैं। फिर झोपड़ी में जाएंगे, बाबा स्नेह के झूलों में बच्चों को झुलाते थे, वहां झूला भी था, बाबा झूले में बैठ जाते थे, बाबा कहते एक झूले में नहीं बैठना है, खजानों के झूलों में झूमो, स्नेह के झूलों में झूमो, बाबा के प्यार के झूले में झूमो, शांति के झूले में झूमो, तो वो अनुभव कराते। फिर जब बाबा के अव्यक्त बाबा आते थे फिर हिस्ट्री हॉल में आते थे, हिस्ट्री हॉल के बाद फिर जब वो हॉल छोटा होने लगा तो 1976 से अव्यक्त बाबा इसी मेडिटेशन हॉल में आते थे। बाबा की यहाँ गद्दी होती थी और हम सब बच्चे कैसे बैठते, बच्चे क्या करते, बाप बैठा होगा, माँ बाप बैठे होंगे, सब पुंगड़े बन के एकदम छोटे छोटे सब के सब यहीं बैठे रहते, एक ही कुर्सी होती थी, दादी भी यहाँ, सब दादी दीदियाँ सब यहाँ बैठी होती, ये स्थान था उनका, और एक ही कुर्सी थी जो दीदी बैठती थी क्योंकि दीदी को थोड़ा सा टांग का तकलीफ था। तो ये स्थान है, इस स्थान की विशेषता क्या है, ये स्थान पहले पहाड़ी था, पहाड़ी के साथ साथ ये जो बाबा का बगीचा है अंगूरों के बेल, अंगूरों की बेल यहाँ पर थी, और साकार में बाबा जून का महीना आता 24 जून को अंगूर उतारते थे मम्मा डे पे, बाबा को भोग लगता था, फिर बाबा वो अंगूर सभी स्थानों पर भेजते थे, थोड़े से सेंटर थे और उसमें भी गुजरात को तो मौका मिल जाता था, गुजरात तो बाबा कहते थे ये मधुबन का कमरा है, गुजरात पे बाबा को बहुत नाश था, बाबा कहते थे अहमदाबाद मधुबन का कमरा है, गुजरात बाबा बहुत खुशी से उसको बहुत याद करते, सरला दीदी और हमारी पुरानी जितनी बहनें हैं उनको बाबा बहुत याद करते थे। तो फिर यहाँ पर वो हॉल छोटा हुआ तो ये हॉल बनाया गया, तो यहाँ पर अव्यक्त बाप दादा 82 तक आते रहे। तो आज ये भट्टी नहीं करेंगे आप, भट्टी के साथ साथ ये अनुभव करेंगे कि बाप दादा हमारे सामने बैठे। सारा हॉल भरा होता था, यहाँ वहाँ सब के सब पूरा का पूरा आसपास बैठे होते थे। तो वो दृश्य मुझे याद आ गया, कैसे बाबा यहाँ बैठे हैं और हम लोग यहाँ बैठे होते थे ये वाली जगह पे, इधर बाबा के पास दादियां भी बैठी हैं, हम भी बैठे हैं और सारा टाइम बाबा के साथ बैठे हुए बाबा के वरदान भी सुनते थे और वो अनुभव भी करते थे। तो इस भट्टी में एक ध्यान रखना, जरा भी सुस्ती नहीं आएगी, हैं? सुस्ती नहीं, जब सुस्ती आने लगे बाबा को देखना, बाबा आपको वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, बाबा हमारी झोली भरपूर कर रहे हैं, तो ये भी हमें खास ध्यान रखना है। और दूसरी बात हम आपको बताएं, ये जो भट्टी में आने का मौका मिलता है, ये भट्टी के अंदर बाबा हमको कहते हैं, बाबा ही मेरा सब कुछ, मैं बाबा का, बाबा मेरा, और बाबा ही मेरा हाथ पकड़ के चला रहा है, मैं बाबा की गोदी में हूँ। तो कोई भी प्रकार का बाहर का संकल्प नहीं आवे। और साथ साथ जब हम भट्टी करेंगे जितना हो सके साइलेंस में रहे, इधर उधर की बात में अपना टाइम नहीं करें। और इधर उधर की बात तो घरों में भी करते हैं, सेंटर पर भी करते हैं, लौकिक में भी, सेंटर पर तो नहीं करते हैं, लौकिक में करते हैं। देखो बाबा कहते हैं भी बाबा को याद करो, तो इस भट्टी में सूरत से आए हुए भाई बहने, सूरत के कारण बाबा को भी बहुत नाज रहता है। सूरत अर्थात अपनी सूरत और सीरत के द्वारा बाबा के साथ का अनुभव करने वाले और बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले, तो बाबा को भी बहुत नाज है। तो भट्टी में सुबह शाम बहुत अच्छे अच्छे आप साइलेंस का अनुभव करेंगे। लेकिन बाबा ने कहा आवाज में रहते हुए भी कैसे अव्यक्त रहें, वो भी इस भट्टी में आपको अनुभव करने का मौका मिलेगा। सुबह के टाइम कोई आवाज नहीं है, शाम के टाइम कोई आवाज नहीं है, पांडव भवन में बहुत साइलेंस मिलेगी। लेकिन आपको मालूम है कि शिविर चलते हैं ना नीचे शांतिवन से, तो ये मधुबन बाबा के बच्चों के लिए तो त्याग और तपस्या की भूमि, अनुभव करने की भूमि, लेकिन दूसरों के लिए दर्शनीय स्थल है। तो शिविर के भाई बहने भी बीच बीच में आते हैं चारों धाम की यात्रा करने। अभी थोड़ा ज्ञान सुना होता है, जब उनके आने का दिन होता है तो वो टाइम होता है उनका 11:30 से लेकर या 12 से लेकर के 3:30 बजे तक। ऐसा लगता है कि इस दर्शनीय स्थल में मेला चल रहा, लेकिन उनको पता नहीं होता, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, आवाज करते अरे तुम इधर आओ जल्दी आओ, क्योंकि अपने ग्रुप से इधर उधर ना हो जाएं। तो उस समय भी हमको क्या देखना है कि जब आप भोजन करेंगे ऊपर, उनका भी भोजन साइड में होता है, थोड़ी आवाज होती है, तो उस समय भी आपको भट्टी में एक मौका मिल रहा है अभ्यास करने का, आवाज में होते हुए भी आवाज से परे, सुनते हुए भी ना सुनने का। तो ये एक मौका मिलता है, हर प्रकार का अनुभव बाबा कराते हैं। बिना आवाज के तो रह जाएंगे साइलेंस में, आवाज में भी साइलेंस में रहें और बिल्कुल अपनी स्टेज को नीचे नहीं लाना और एकदम अपनी स्टेज को हाई बना करके वो योग के वाइब्रेशन फैलाएंगे, चाहे वो आवाज में होंगे, वो एक ही दिन होता है, आवाज में होते हैं, लेकिन वो भी अनुभव करें कि ये तो बहुत शांत है। तो ये भी आपको अभ्यास करने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप लौकिक में रहते हैं, लौकिक में कई तरह के लोग होते हैं, किससे मिलना होता है, कैसी कैसी आवाज होती है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन हमें प्रैक्टिस करने का मौका भी मिल जाता है। बाकी तो आप आए हैं बाबा के घर में, आप सभी का प्यारे प्यारे बाबा दादी और दादियों की तरफ से, दादी जानकी की तरफ से, रतमणी दादी की तरफ से, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन और मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत भी है। और दादी जानकी जी की भी तबीयत ठीक हो रही है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। दादी जानकी भी ज्ञान के द्वारा फिर भी भरपूर करती रहती हैं, कैसी भी तबीयत हो लेकिन ज्ञान रत्नों के द्वारा वो सबको भरपूर करती हैं। हर गुरुवार के दिन विदेश के अंदर उनका एक संदेश जाता है, तो उस दिन भी दादी ने रिकॉर्ड करके भेजा और सबको याद दिया। और रिकवरी हो रही है, लेकिन शोल्डर में जो है इसको तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो दादी भी आप सबको बहुत, उनको खुशी होती है। मधुबन में भट्टी चले रही है, अच्छा ये भाई बहने आए हैं, सबको मेरी याद देना, तो कितना भाग्यशाली है जिनको दूर बैठे भी दादियां याद करती हैं। और साथ साथ हम आपको बताएं, जब आप यहाँ पर हैं तो भट्टी करते समय दौड़ना नहीं है, दौड़ते जाएंगे कई बार आराम से चलो, क्लास से आते हैं आराम से आओ। और कभी अचानक बारिश आ जाती, इस ग्रुप में तो नहीं आई, पिछले ग्रुप में आई, तो थोड़ा सा आराम से चलने का। और किचन में भी जाती है ना, कभी सफाई होती है, गीला गीला हुआ पड़ा होता है, तो गीला होता तो ध्यान नहीं देते हैं, तो पांव थोड़ा स्लिप करता है, वहां भी आराम से चलो। और आपके भोजन की व्यवस्था तो ऊपर है, सब चढ़ तो सकते हैं, फिर भी कई बुजुर्ग हैं जो नहीं चढ़ सकते, वहाँ लिफ्ट भी है, वो आपके सेवादार इनको बता देंगे। और आज तो आप बड़ी लंबी यात्रा करके आए, सूरत से आना सारा दिन लग जाता है, कोई दिन को आए कोई अभी अभी पहुंचे हैं, बहुत थकावट भी हो जाती है, बस में बैठे इधर आए उधर आए थकावट हो जाती है, लेकिन आज तो बाबा की गोदी में सो जाना, सारी थकावट दूर हो जाएगी और बाबा आप सबको बिल्कुल हल्का करके और उड़ाते रहेंगे। तो भट्टी में क्या करेंगे, एक तो अपनी झोली पूरी भरपूर करके जाएंगे, झोली में देखना छेद ना हो जाए, छेद हो जाता ना, सुस्ती आ गई, किसी की बात सुन ली, थोड़ा सा इधर देख लिया, फिर वो थोड़ा सा झोली के अंदर छेद हो जाता, पता ही नहीं पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी मोलाई मस्ती में रहना, बाबा को देखना, बाबा मेरा साथी, मैं बाबा की और बाबा ही मेरे सामने हैं। जब ही रखेंगे तब देखेंगे कि बाबा तो वरदानों की वर्षा कर रहा है, कितने अनुभवों से हमारे ऊपर फाउंटेन की तरह फुहारे हमारे ऊपर आ रहे हैं, बाबा हमें फरिश्ता बना रहा है, लाइट बना रहा है, हम हल्के होकर के फरिश्ते बन करके चल रहे हैं, और भी गहरे गहरे अनुभव करते जाएंगे। फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, और बहुत अनुभव करें बाबा के साथ के, और जिस लक्ष्य से आए हैं उसी लक्ष्य से भी अधिक अनुभव करके जाएंगे, ऐसी हमारी शुभकामना है।
ओम शांति।
खास पूर्णिमा बहन को भी हम बहुत बहुत, क्योंकि बहुत समय के बाद पूर्णिमा बहन पहले यहाँ आती थी रहती थी और ये भट्टी के कारण आई, तो पूर्णिमा बहन का भी बहुत बहुत स्वागत करते, ताली बजाओ इनके लिए, हमको इन बहनों को देख के बहुत खुशी होती है। और ये क्या नाम है, तृप्ति, कृति बोल रही थी, तृप्ति बहन तो आती रहती है लेकिन अधिकतर शांति वन में आती है, यहाँ बीच में ऐसी चक्कर लगाने आती है, तो आज भट्टी के निमित्त आई। आपका भी और सभी टीचर्स बहने हाथ खड़ा करो जो साथ में आई है, उनका भी बहुत बहुत, ये पुरानी बहने नड़ियाद की है,
संध्या बहन, संध्या पुरानी है, कविता बहन, सब
संध्या को तो जानते हैं, सबका स्वागत है। आपके साथ टीचर्स बहनों को भी मौका मिल जाता है थोड़ा टाइम, पहले तो यही रहते थे और अभी तो सब कारोबार नीचे है, यहाँ पर डबल विदेशियों का चलता है, लेकिन भट्टी के निमित्त सब ब्राह्मणों को मौका मिल रहा है अपने आप को भरपूर करने का।
साकार पालना की अनुभूति इस समय भी कैसे कर सकते हैं, उसके बहुत अच्छे अच्छे दृश्य आज हम सभी को आदरणीय शशि दीदी ने इमर्ज कराई है। बाबा किस प्रकार पांडव भवन में खड़ा है, झोपड़ी में कितना अच्छा सुखों के खजानों के झूलों में झूला रहा है, शांति स्तंभ कितनी अच्छी शकास देता है, ये सब चैतन्य दृश्य हम सभी के सामने बहन जी ने रखे हैं। हम चार पांच दिन इन पावन दृश्यों का सुख लेते रहेंगे और साकार पालना की अनुभूति करते रहेंगे। और भी बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान पर खिंचवाई है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से रहना है, बहुत अच्छा स्फूर्ति में रहना है, जरा भी सुस्ती ना आए इस पर ध्यान रखना है। तो इन सभी शिक्षाओं को श्रृंगार के रूप में सजाते हुए हम अपने आप को भरपूर करेंगे।